ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
कवि जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कंकाल चतुर्थ खंड भाग 6। जज के साथ 5 जूरी बैठे थे। सरकारी वकील ने अपना वक्तव्य समाप्त करते हुए कहा, जूरी सज्जनों से मेरी प्रार्थना है कि अपना मत देते हुए वो इस बात का ध्यान रखें कि वे लोग हत्या जैसे एक भीषण अपराध पर अपना मत दे रहे हैं। स्त्री साधारण रत मनुष्य की दया को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, फिर जबकि उसके साथ उसकी स्त्री जाति की मर्यादा का प्रश्न भी लग जाता है, तब ये बड़े साहस का काम है कि न्याय की पूरी सहायता हो। समाज में हत्या का रोग बहुत जल्द फैल सकता है यदि अपराधी इस। जज ने वक्तव्य समाप्त करने का संकेत किया। सरकारी वकील ने केवल, अच्छा तो आप लोग शांत हृदय से अपराध का गुरुत्व विचारक न्यायालय को न्याय करने में सहायता दीजिए, कहकर वक्तव्य समाप्त किया। जज ने जूरियों को संबोधन करके कहा, सज्जनों ये एक हत्या का अभियोग है जिसमें नवाब नाम का मनुष्य वृंदावन के समीप यमुना के किनारे मारा गया। इससे तो संदेह नहीं है कि वो मारा गया। डॉक्टर का कहना है कि गला घोटने और पत्थर से सिर फोड़ने से उसकी मृत्यु हुई है। गवाह कहते हैं, जब हम लोगों ने देखा तो यह यमुना उस मृत व्यक्ति पर झुकी हुई थी, पर यह कोई नहीं कहता कि मैंने उसे मारते देखा। यमुना कहती है कि स्त्री की मर्यादा नष्ट करने जाकर नवाब मारा गया, पर सरकारी वकील का यह कहना बिल्कुल निरर्थक है कि उसने मारना स्वीकार किया। यमुना के वाक्यों से यह अर्थ कदापि नहीं निकाला जा सकता कि इस विशेष बात को समझा देना आवश्यक था। ये दूसरी बात है कि वो स्त्री अपनी मर्यादा के लिए हत्या कर सकती है या नहीं। यद्यपि नियम इसके लिए बहुत स्पष्ट है, विचार करने के समय आप लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे। आप लोग एकांत में जा सकते हैं। जूरी लोग एक कमरे में जा बैठे। यमुना निर्भीक होकर जज के मुंह को देख रही थी। न्यायालय में दर्शक बहुत थे। उस भीड़ में मंगल निरंजन इत्यादि भी थे। सहसा द्वार पर एक हलचल हुई। कोई भीतर घुसना चाहता था। रक्षकियों ने शांति की घोषणा की। जूरी के लोग आए। दो ने कहा, हम लोग यमुना को हत्या का अपराधी समझते हैं, पर दंड इसे कम दिया जाए। जज ने मुस्कुरा दिया। अन्य 3 सज्जनों ने कहा, प्रमाण अभियोग के लिए प्राप्त नहीं है। अभी वे पूरा कह नहीं पाए थे कि एक लंबा चौड़ा दाढ़ी मूछ वाला युवक कंबल बगल में दबाए कितनों ही को धक्का देता जज की कुर्सी की बगल वाली खिड़की से कब घुसा आया, ये किसी ने नहीं देखा। वो सरकारी वकील के पास आकर बोला, मैं हूं हत्यारा, मुझको फांसी दो, ये स्त्री निरपराध है। जज ने चपरासियों की ओर देखा। पेशकर ने कहा, पागलों को भी तुम नहीं रोकते, ऊंधते रहते हो क्या? इस गड़बड़ी में बाकी 3 जूरी सज्जनों ने अपना वक्तव्य पूरा किया। हम लोग यमुना को निरपराध समझते हैं। उधर वो पागल भीड़ में से निकला जा रहा था। उसका कुत्ता भौंक कर हल्ला मचा रहा था। इसी बीच जज ने कहा, हम इन 3 जूरियों से सहमत होते हुए यमुना को छोड़ देते हैं। एक हलचल मच गई। मंगल और निरंजन, जो अब तक दुश्चिंता और संदेह से कमरे से बाहर थे, यमुना के समीप आए। वो रोने लगी। उसने मंगल से कहा, मैं नहीं चल सकती। मंगल मन ही मन कट गया। निरंजन उसे संतावना देकर आश्रम तक ले आया। एक वकील साहब तो कहने लगे, क्यों जी, मैंने तो समझा था कि पागलपन भी एक दिल लगी है, पर ये तो प्राणों से भी खिलवाड़ है। दूसरे ने कहा, यही तो पागलपन है जो पागल से भी बुद्धिमानी की आशा तुम रखते हो। दोनों वकील मित्र हंसने लगे। पाठकों को कोतूहल होगा कि बाथम ने अदालत में उपस्थित होकर क्यों नहीं इस हत्या पर प्रकाश डाला, परंतु वो नहीं चाहता था कि इस हत्या के अवसर पर उसका रहना तथा उस घटना से उसका संपर्क सब लोग जान ले। उसका हृदय घंटी के भाग जाने से और भी लज्जित हो गया था। अब वो अपने को इस संबंध में बदनाम होने से बचाना चाहता था। वो प्रचारक बन गया था। इधर आश्रम में लतिका, सरला, घंटी और नंदो के साथ यमुना भी रहने लगी, पर यमुना अधिकतर कृष्ण शरण की सेवा में रहती। उनकी दिनचर्या बड़ी नियमित थी। वो चाची से भी नहीं बोलती और निरंजन उसके पास ही आने से संकुचित होता। भंडारी जी का तो साहस ही उसका सामना करने का ना हुआ। पाठक आश्चर्य करेंगे कि घटना सूत्र तथा संबंध में इतने समीप के मनुष्य एकत्र होकर भी चुपचाप कैसे रहे। लतिका और घंटी के बीच जो तकरार थी वो ना रही, क्योंकि अब बाथम से दोनों का कोई संबंध ना रहा। नंदो चाची ने यमुना के साथ उपकार भी किया था और अन्याय भी। यमुना के हृदय में मंगल के व्यवहार की इतनी तीव्रता थी कि उसके सामने और किसी के अत्याचार परिस्फुटित हो ही नहीं पाते। वो अपने दुख सुख में किसी को साझीदार बनाने की चेष्टा न करती। निरंजन मन में सोचता, मैं बैरागी हूँ, मेरे शरीर से संबंध रखने वाले प्रत्येक परमाणुओं को मेरे दुष्कर्म के ताप से दग्ध होना विधाता का अमोद विधान है। यदि सब बातें खुल जाएं, तो यह सताई हुई स्त्री और भी विरक्त के नीचे पिसने लग जाएगी और फिर मैं कहाँ खड़ा होऊंगा? यह आश्रम मुझे किस दृष्टि से देखेगा? नंदो सोचती, यदि मैं कुछ भी कहती तो मेरा ठिकाना नहीं, इसलिए जो हुआ सो हुआ, अब इसमें चुप रह जाना ही अच्छा है। मंगल और यमुना आप ही अपना रहस्य खोले, मुझे क्या पड़ी है। इसी तरह निरंजन, नंदो और मंगल का मौन भय यमुना के अतृष्ट अंधकार का सृजन कर रहा था। मंगल का सार्वजनिक उत्साह यमुना के सामने अपराधी हो रहा था। वो अपने मन को संतावना देता कि इसमें मेरा क्या अन्याय है, जब उपयुक्त अवसर पर मैंने अपना अपराध स्वीकार करना चाहा, तभी तो यमुना ने मुझे वर्जित किया था, अपना और मेरा पथ भिन्न भिन्न कर दिया था। इसके हृदय में विजय के प्रति इतनी सहानुभूति कि उसके लिए फांसी पर चढ़ना स्वीकार, यमुना से अब मेरा कोई संबंध नहीं, वो उद्विग्न हो उठता। सरला दूर से उनके उद्विग्न मुख को देख रही थी। उसने पास आकर कहा, आहा, तुम इन दिनों अधिक परिश्रम करते करते थक गए हो। नहीं माता, सेवक को विश्राम कहाँ, अभी तो आप लोगों के संग प्रवेश का उत्सव जब तक समाप्त नहीं हो जाता, हमको छुट्टी कहाँ। सरला के हृदय में स्नेह का संचार देख मंगल का हृदय भी संदिग्ध हो चला। उसको बहुत दिनों बाद इतनी सहानुभूति सूचक शब्द पुरस्कार में मिले थे। मंगल इधर लगातार कई दिन धूप में परिश्रम करता रहा। आज उसकी आंखें लाल हो रही थी, दालान में पड़ी हुई चौकी पर जाकर लेट रहा था। ज्वर का आतंक उसके ऊपर छा गया था। वो अपने मन में सोच रहा था कि बहुत दिन हुए बीमार पड़े, काम करके रोगी हो जाना भी एक विश्राम है, चलो कुछ दिन छुट्टी ही सही। फिर वो सोचता कि मुझे बीमार होने की आवश्यकता नहीं, एक घुट पानी तक कोई ना पूछेगा, ना भाई ये सुख दूर रहे। पर उसके अस्वीकार करने से क्या दुख ना आते, उसे ज्वर आ ही गया। वो एक कोने में पड़ा, निरंजन उत्सव की तैयारी में व्यस्त, मंगल के रोगी हो जाने से सबका छक्का छूट गया। कृष्ण शरण जी ने कहा, तब तक संघ के लोगों के उपदेश के लिए मैं राम कथा कहूंगा और सर्वसाधारण के लिए प्रदर्शन तो जब मंगल स्वस्थ होगा किया जाएगा। बहुत से लोग बाहर से भी आ गए थे। संघ में बड़ी चहल पहल थी, पर मंगल ज्वर में अचेत रहता, केवल सरला उसे देखती। आज तीसरा दिन था, ज्वर में तीव्र दा था, अधिक वेदना से सिर में पीड़ा थी। लतिका ने कुछ समय के लिए छुट्टी देकर सरला को स्नान करने के लिए भेज दिया। सवेरे की धूप जंगले के भीतर जा रही थी, उसके प्रकाश में मंगल की रक्तवर्ण आंखें भीषण लाली से चमक उठी। मंगल ने कहा, गाला, लड़कियों की पढ़ाई पर। लतिका पास बैठी थी, उसने समझ लिया कि ज्वर की भीषणता में मंगल प्रलाप कर रहा है। वो घबरा उठी, सरला इतने में स्नान करके आ चुकी थी। लतिका ने प्रलाप की सूचना दी। सरला ने उसे वहीं रहने के लिए कहा और गोस्वामी जी के पास चली गई। उसने कहा, महाराज, मंगल का ज्वर भयानक हो गया है, वो गाला का नाम लेकर चौंक उठा। गोस्वामी जी कुछ चिंतित हुए, कुछ विचार कर उन्होंने, सरला, घबराने की कोई बात नहीं है, मंगल शीघ्र अच्छा हो जाएगा, मैं गाला को बुलवाता हूँ। गोस्वामी जी की आज्ञा से एक छात्र उनका पत्र लेकर सीकरी गया। दूसरे दिन गाला उसके साथ आई। यमुना ने उसे देखा, वो मंगल से दूर रहती, फिर भी ना जाने क्यों उसका हृदय कचोट उठता। पर वो लाचार थी। गाला और सरला ने कमर कसकर सेवा की। वैद्य ने देखकर कहा, अभी 5 दिन और लगेंगे ज्वर को उतरने में, बीच में सावधानी की आवश्यकता है, कुछ चिंता नहीं। यमुना सुन रही थी, वो कुछ निश्चिंत हुई। इधर संघ में बहुत से बाहरी मनुष्य आ गए थे, उन लोगों के लिए गोस्वामी जी राम कथा कहने लगे थे। आज मंगल के ज्वर का वेग अत्यंत भयानक था। गाला पास बैठी हुई मंगल के मुख पर पसीने की बूंदों को कपड़े से पोंछ रही थी। बार बार प्यास से मंगल का मुंह सूखता था। वैद्य जी ने कहा था कि आज की रात बीत जाने पर यह निश्चय अच्छा हो जाएगा। गाला की आंखों में बेबसी और निराशा नाच रही थी। सरला ने दूर से ये सब देखा। अभी रात आरंभ हुई थी। अंधकार ने संघ के प्रांगण में लगे हुए विशाल वृक्षों पर अपना दुर्ग बना लिया था। सरला का मन व्यथित हो उठा। वो धीरे धीरे एक बार कृष्ण की प्रतिमा के सम्मुख आई। उसने प्रार्थना की, वही सरला जिसने एक दिन कहा था, भगवान के दुख दान को आंचल पसार कर लूंगी, आज मंगल की प्राण भिक्षा के लिए आंचल पसारने लगी। ये कंकाल का गर्व था। जिसके पास कुछ बचा नहीं था वो किसकी रक्षा चाहती थी। सरला के पास तब क्या था जो वो भगवान के दुख दान से हिचकती। हताश जीवन तो साहसिक बन ही जाता है, परंतु आज उसे कथा सुनकर विश्वास हो गया था कि विपत्ति में भगवान सहायता के लिए अवतार लेते हैं, आते हैं भयभीतों के उद्धार के लिए। आह, मानव हृदय की स्नेह दुर्बलता कितना महत्व रखती है। यही तो उसकी यांत्रिक जीवन की ऐसी शक्ति है। प्रतिमा निश्चल रही, तब भी उसका हृदय आशापूर्ण था। वो खोजने लगी। मंगल मंगल कहती हुई वो आश्रम के बाहर निकल पड़ी। उसे विश्वास था कि कोई देवी सहायता मुझे अचानक मिल जाएगी अवश्य। यदि मंगल जी उठता तो गाला कितना प्रसन्न होती। ये बड़बड़ाती हुई वो यमुना के तट की ओर बढ़ने लगी। अंधकार में पथ दिखाई ना देता था, पर वो चलती जा रही थी। यमुना के पुलीन में नेश अंधकार बिखरा था। तारों की सुंदर पंक्तियां झलमलाती हुई अनंत में जैसे घूम रही थी। उनके आलोक में यमुना का स्थिर गंभीर प्रवाह जैसे अपनी करुणा में डूब रहा था। सरला ने देखा, एक व्यक्ति कंबल ओढ़े यमुना की ओर मुंह किए बैठा है, जैसे किसी योगी की अचल समाधि लगी हो। सरला कहने लगी, हे यमुना माता, मंगल का कल्याण करो, उसे जीवित करके गाला को भी प्राण दान दो। आज की रात बड़ी भयानक है, दुहाई भगवान की। वो बैठ उठा, कंबल वाला विचलित हो उठा। उसने बड़े गंभीर स्वर से पूछा, क्या मंगल देव रूण है? प्रार्थनी और व्याकुल सरला ने कहा, हाँ महाराज, ये किसी का बच्चा है, उसके स्नेह का धन, उसकी कल्याण कामना कर रही हूँ। और तुम्हारा नाम सरला है, तुम ईसाई के घर पहले रहती थी? धीरे स्वर में प्रश्न हुआ। हाँ योगीराज, आप तो अंतर्यामी हैं। उस व्यक्ति ने टटोल कर कोई वस्तु निकालकर सरला की ओर फेंक दी। सरला ने देखा, वो एक यंत्र है। उसने कहा, बड़ी दया हुई महाराज, तो इसे ले जाकर बांध दूंगी ना। वो फिर कुछ ना बोला, जैसे समाधि लग गई हो। सरला ने अधिक छेड़ना उचित नहीं समझा, मन ही मन नमस्कार करती हुई प्रसन्नता से आश्रम की ओर लौट पड़ी। वो अपनी कोठरी में आकर उस यंत्र को धागे में पिरोकर मंगल के प्रकोष्ठ के पास गई। उसने सुना, कोई कह रहा है, बहन गाला, तुम थक गई होगी, लाओ मैं कुछ समय सहायता कर दूं। उत्तर मिला, नहीं यमुना बहन, मैं तो अभी बैठी हूँ, फिर आवश्यकता होगी तो बुलाऊंगी। एक स्त्री लौटकर निकल गई। सरला भीतर घुसी। उसने वो यंत्र मंगल के गले में बांध दिया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। वहीं बैठी रही। दोनों ने रात भर बड़े यत्न से सेवा की। प्रभात होने लगी। बड़े संदेह से सरला ने उस प्रभात के आलोक को देखा। दीप की ज्योति मलिन हो चली। रोगी इस समय निद्रित था। जब प्रकाश उस कोठरी में घुस आया तब गाला, सरला और मंगल तीनों नींद में सो रहे थे। कथा समाप्त करके सब लोगों के चले जाने पर गोस्वामी जी उठकर मंगल देव के पास आए। तब गाला बैठी पंखा झल रही थी। उन्हें देखकर वो संकोच से उठ खड़ी हुई। गोस्वामी जी ने कहा, सेवा सबसे कठिन व्रत है देवी, तुम अपना काम करो। हाँ मंगल, तुम अब अच्छे हो ना? कंपित कंठ से मंगल ने कहा, हाँ गुरुदेव, अब तुम्हारा अभ्युदय काल है, घबराना मत, कहकर गोस्वामी जी चले गए। दीपक जल गया। आज अभी तक सरला नहीं आई। गाला को बैठे हुए बहुत विलंब हुआ। मंगल ने कहा, जाओ गाला, संध्या हुई है, हाथ मुंह तो धो लो, तुम्हारे इस अथम परिश्रम को मैं कैसे उधार पाऊंगा। गाला लज्जित हुई। इतने संभ्रंत मनुष्य और स्त्री के बीच आकर कानन वासिनी ने लज्जा सीख ली थी। वो अपने स्त्रीत्व का अनुभव कर रही थी। उसके मुख पर विजय की मुस्कुराहट थी। उसने कहा, अभी माँ जी नहीं आई है, उन्हें बुला लाऊं, कहकर सरला को खोजने के लिए वो चली। सरला मोल सिरी के नीचे बैठी सोच रही थी। जिन्हें लोग भगवान कहते हैं उन्हें भी माता की गोद से निर्वासित होना पड़ा था। दशरथ ने तो अपना अपराध समझकर प्राण त्याग दिए, परंतु कौशल्या कठोर होकर जीती रही। जीती रही श्री राम का मुख देखने के लिए क्या मेरा भी दिन लौटेगा, क्या मैं भी इसीलिए अब तक प्राण न दे सकी। गाला ने सहसा आकर कहा, चलिए। दोनों मंगल की कोठरी की ओर चली। मंगल के गले के नीचे वो यंत्र गड़ रहा था। उसने तकिए से खींच कर बाहर किया। मंगल ने देखा कि वो यंत्र उसी का पुराना यंत्र है। वो आश्चर्य से पसीने पसीने हो गया। दीप के आलोक में उसे वो देख ही रही थी कि सरला भीतर आई। सरला को बिना देखे ही अपने कोतूहल में उसने प्रश्न किया, ये मेरा यंत्र इतने दिनों के पश्चात कौन लाकर पहना गया? आश्चर्य है, सरला ने उत्कंठा से पूछा, तुम्हारा यंत्र कैसा बेटा? ये तो एक साधु से लाई हूँ। मंगल ने सरल आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, माँ जी, ये मेरा ही यंत्र है। मैं इसे बराबर बाल्यकाल में पहना करता था। जब ये खो गया था तभी से दुख पा रहा हूँ। आश्चर्य है, इतने दिनों बाद ये कैसे आपको मिल गया? सरला के धैर्य का बांध टूट पड़ा। उसने यंत्र को हाथ में लेकर देखा, वही त्रिकोण यंत्र। वो चिल्ला उठी, मेरे खोए हुए निधि, मेरे लाल, ये दिन देखना किस पुण्य का फल है मेरे भगवान। मंगल तो आश्चर्यचकित था। सब साहस बटोरकर उसने कहा, तो क्या सचमुच तुम ही मेरी माँ हो? तीनों के आनंद अश्रु बांध तोड़कर बहने लगे। सरला ने गाला के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, तेरे भाग्य से आज मुझे मेरा खोया हुआ धन मिल गया। गाला गड़ी जा रही थी। मंगल एक आनंदमय कोतूहल से पुलकित हो उठा। उसने सरला के पैर पकड़कर कहा, मुझे तुमने छोड़ क्यों दिया था माँ? उसकी भावनाओं की सीमा ना थी। कभी वो जीवन भर के हिसाब को बराबर हुआ समझता, कभी उसे मान होता कि आज से संसार में मेरे जीवन का प्रारंभ हुआ है। सरला ने कहा, मैं कितनी आशा में थी, ये तुम क्या जानोगे? तुमने तो अपनी माता के जीवित रहने की कल्पना भी नहीं की होगी, पर भगवान की दया पर मेरा विश्वास था और उसने मेरी लाज रख ली। उस हर्ष में लतिका वंचित ना रही। उसने भी बहुत दिनों बाद अपनी हंसी को लौटाया। भंडार में बैठी हुई नंदो ने इस संवाद को सुना। वो चुप रही। घंटी भी स्तब्ध होकर बैठी रही और अपनी माँ का कामकाज में हाथ बटाने लगी।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।